निशांत ने आयू को किडनैप कर लिया था और वो अब आयू का नाम लेकर आरफ को ब्लैकमेल कर रहा था। आरफ की चाल को निशांत ने जल्द ही समझ लिया था और उसने आरफ से ये कहा कि वो जाकर माहिरा को उन सब से बाहर निकाले, बदले में वो माहिरा को उसके धोखे के बारे में नहीं बताएगा। आरफ इतनी आसानी से निशांत की बात मानने वाला नहीं था। उसने कबीर को चिप के साथ दुबई भेज दिया जबकि खुद चंडीगढ़ जाने के लिए निकल गया था। इस बीच आयू निशांत के साथ उसके घर पर थी। निशांत ने अपने हाथ में एक प्लेट ले रखी थी जिसमें फ्रूट कटे हुए थे। वो उसे आयू को देते हुए बोला, ये लो चुपचाप से खा लो और जिद मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो, अपने लिए ऐसे ही अपने बच्चों के बारे में सोचो। आयू ने उसके हाथ से प्लेट ली। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए उसने आगे बहस नहीं की। फिर भी आयू गुस्से में थी। उसने निशांत को घूरते हुए कहा, तो तुम माहिरा लूथरा के आदमी हो? जिस हिसाब से तुमने हमारे घर पर आकर हरकत की थी उससे मुझे समझ जाना चाहिए था। जब तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए थे तो फिर एक्सीडेंट से मुझे बचाया क्यों? तुम्हारे लिए तो तुम्हारा काम और भी आसान होने वाला था। क्योंकि मैं नहीं जानता था तुम वही लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो मैंने आरफ खुराना की पत्नी की फ़ोटो तक नहीं देखी थी। मैं बस उसे ढूंढ लूँगा इसी विश्वास के साथ यहाँ आया था। अब तुम मुझे मिल गई हो तो मेरा काम आसान हो गया। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा, निशांत ने जवाब दिया। आयू ने उसे देखकर सार्कास्टिकली सर हिलाकर कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? इस वक्त किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और अपने फ्यूचर के सपने देख रहे हो। हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नैरो माइंडेड इंसान नहीं हूँ। किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी नहीं था। चलो पास्ट में हम दोनों के साथ जो भी हुआ उसे जाने देते हैं, फ्यूचर में दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को डेडिकेटेड रहेंगे, निशांत ने काफ़ी बेपरवाही से कहा। आयू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप फ्रूट्स खाने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, मुझे आरफ की कमजोरी नहीं बनना है, वो इंडिया आया हुआ है। उसके पीछे के बैकग्राउंड से पता चल रहा था कि वो इस वक्त हमारे मुंबई वाले घर में है। प्लीज़ आरफ, इस बेवकूफ़ आदमी की बातों में मत आना और अपने प्लान के हिसाब से ही चलना, पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई। आयू ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और उस लम्हे को याद करने लगी जब वो निशांत के जाल में फंस गई थी। सुबह के करीब जब आयू आर्या के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी तब सारे टेस्ट करवाने के बाद वो आर्या के केबिन में थी। आर्या ने आयू से कहा, मॉम आप कैब लेकर घर चली जाइए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा और ऐसी हालत में आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, पर बार बार मुझे कॉल करके मेरी हेल्थ अपडेट मत लेना। हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ ही हूँ फिर भी तुम 50 कॉल कर चुके हो मुझे, आयू ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर आप भी केयरफुल रहिएगा, घर आकर मुझे अंकल आंटी से आपकी शिकायतें नहीं सुननी है, तो एक गुड गर्ल बनकर रेस्ट कीजिएगा, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। आर्या से बात करने के बाद आयू वहां से बाहर आ गई। तभी उसने देखा कि वहां निशांत अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था। ये बेशर्म इंसान यहां तक आ गया, आयू ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा और उसे इग्नोर करके आगे जाने लगी। तभी निशांत जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। आयू ने उसे देखकर गुस्से में कहा, मेरा रास्ता छोड़ो और हाँ मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अच्छा जो भी है उसे जाने देते हैं, अकेले कहाँ भटकोगी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और तुम्हारा घर जानता भी हूँ तो मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, निशांत ने काफ़ी प्यार से कहा। नो थैंक्स, मेरी टैक्सी आते ही होगी और मैं किसी अजनबी के साथ कहीं भी जाने का रिस्क नहीं उठा सकती हूँ, आयू ने जवाब दिया। टैक्सी वाला भी कौन सा तुम्हारा रिश्तेदार लगता है, वो भी अजनबी ही होगा। अच्छा मुझे एक टैक्सी ड्राइवर समझ कर पैसे दे देना, निशांत ने जिद करते हुए कहा। आयू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहाँ कहीं टैक्सी का वेट कर रही थी। 15 मिनट बीत जाने के बाद भी जब वहाँ कोई टैक्सी नहीं आई तो उसके पास खड़ा निशांत बोला, देखो जिद करने से कुछ नहीं होगा, साफ पता चल रहा है तुम थक गई हो और कमज़ोर भी लग रही हो। आई प्रॉमिस मैं कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करूँगा, पूरे रास्ते चुप रहूँगा। ठीक है अपना मुँह बंद रखना, आयू ने जवाब दिया और निशांत के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में बैठते ही आयू अपनी रिपोर्ट पढ़ने लगी। तभी निशांत की नज़र उन रिपोर्ट्स पर गई। उसे पता चल गया था कि आयू प्रेग्नेंट है और ये उसके पास अच्छा मौका था आरफ को आयू के नाम से ब्लैकमेल करने का। ऊपर से माहिरा के साथ जो भी हुआ था उसके बारे में उसे पता भी था। अचानक निशांत ने यू टर्न लिया और उसे ज़बरदस्ती अपने पास हॉस्टेज बना लिया था। फ्रूट खाने के बाद आयू ने निशांत की तरफ देखकर कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने मुझे कब और कहाँ देखा, जिसके बाद मैं तुम्हें पसंद आ गई। तुमसे मिलने के बाद एक बात तो साफ है कि तुम माहिरा के जैसे नहीं हो, क्यों उसके जैसी औरत के साथ काम कर रहे हो? निशांत ने आयू की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, पैसों के लिए और किस लिए, वो मुझे उसके पास रहने के हर एक मिनट के पैसे देती है, चाहे मैं उसके लिए उसे एडवाइस दूं या उसके पास में बैठकर एक सिंपल सा डिनर ही क्यों ना करूं। बेचारी अकेली औरत है, कोई दोस्त वगैरह है नहीं, तो बस मैं उसका दोस्त बन गया और वो मुझे उस दोस्ती की कीमत दे रही है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये तुम्हें एक दिन समझ आ जाएगा। आज जैसे माहिरा लूथरा अकेली है और दोस्त बनाने तक के पैसे दे रही है, वैसा ही हाल तुम्हारा होगा। आयु ने निशांत को समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा और आरव का पहले ही तलाक हो चुका है। उसे फिर से माहिरा के पास जाना पड़ेगा और तुम्हें मुझसे शादी करनी है। शादी के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर इसका बाप आरव खुराना हो, निशांत ने जवाब दिया। वो अभी तक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आयु समझ गई थी कि निशांत को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला था। फ्रूट्स खाने के कुछ ही देर में आयु को नींद आ गई थी। निशांत उसके आसपास टहल रहा था, उसे आरव की अगली अपडेट का इंतजार था। इस बीच आरव चंडीगढ़ पहुंच चुका था और आते ही वो सीधे खुराना मेंशन में गया। आर्या पूरे दिन से हॉस्पिटल में था, इस वजह से उसे पता नहीं चला कि आयु घर नहीं पहुंची है। सर्जरी में बिजी रहने की वजह से वो अपना मोबाइल भी ऑन नहीं कर पाया था। वहीं युवराज और प्रिया को लग रहा था कि आयु आर्या के साथ हॉस्पिटल में रुक गई है। आरव ने जैसे ही खुराना मेंशन में कदम रखा, सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। आरव ने उसे इग्नोर किया और अंदर गया। हमेशा की तरह युवराज लिविंग रूम में बैठकर ऑफिस का काम देख रहे थे, तो प्रिया उनके पास बैठकर मोबाइल में लगी हुई थी। आरव ने इतने टाइम बाद उन्हें देखा था। ऊपर से आयु की जो सिचुएशन थी उसमें वो इमोशनल हो रहा था, फिर भी उसके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं था। आरव ने गहरी सांस ली और फिर युवराज और प्रिया की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, मॉम, डैड। आरव की आवाज सुनकर युवराज और प्रिया ने तुरंत ऊपर देखा। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आरव घर लौट आया है। प्रिया ने कुछ नहीं सोचा समझा, वो जल्दी से खड़ी हुई और दौड़कर आरव के गले लग गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थी।
मेरा दिल कहता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे, तुम वापस आ गए हो ना अब हम सबके पास, प्रिया ने रोते हुए कहा। युवराज भी आरव को देखकर काफी खुश था। वो उसके पास आकर उसके कंधे को सहलाने लगा। आरव प्रिया से अलग हुआ और बोला, हाँ मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ जरूरी चीजें देखनी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आर्या कहाँ है। वो आयु के साथ हॉस्पिटल में है, मैं उसे कॉल करके यहाँ बुला देता हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। नहीं मॉम, आर्या आयु के साथ हॉस्पिटल में नहीं है, वो अकेले हॉस्पिटल में है और आयु को इस वक्त माहिरा के किसी आदमी ने किडनैप कर रखा है। फिलहाल आप आर्या को घर पर बुलाइए, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, आरव ने जवाब दिया। वहीं आयु के किडनैप होने की खबर सुनकर युवराज और प्रिया दोनों ही चौंक गए थे, साथ ही उनके चेहरे पर घबराहट के भाव भी थे। आरव को जल्द से जल्द आयु को ढूंढना था ताकि वो माहिरा के खिलाफ सबूत लेकर हमेशा के लिए उसकी कैद से आज़ाद हो सके। ओके, इसके बाद दो और एपिसोड आएंगे, स्टे ट्यून्ड।